रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। संक्रमणकालीन न्याय संबंधी आयोग में रिक्त पदाधिकारी नियुक्ति की सिफारिश के लिए गठित समिति गठित करने की प्रमुख तीन दलों के बीच हुई सहमति। सरकार ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक कुलमान घिसिंग को किया बर्खास्त। हितेन्द्र देव शाक्यो को सौंपी कार्यकारी निदेशक की जिम्मेदारी। शासन में रहकर गलत काम करने वालों को दंडित करने का अधिकार नागरिक को है, राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल का कथन। और अमेरिका के जंगलों में फिर भड़की आग, इलाके को तुरंत खाली करने के किए गए आदेश। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने हितेन्द्र देव शाक्य को नेपाल विद्युत प्राधिकरण का कार्यकारी निदेशक नियुक्त करने का निर्णय लिया है। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कुलमान घिसिंग को पद से हटाने का निर्णय लेते हुए शाक्य को नियुक्त किया गया। आज शाम हुई मंत्रिपरिषद बैठक में घिसिंग को पद से हटाने का फैसला किया गया। ये जानकारी कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी के हवाले से नेपाल टीवी ने दी। ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि घिसिंग द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं था, इसलिए मंत्रालय उन्हें हटाने के लिए मंत्रिपरिषद के पास प्रस्ताव लेकर गया था। इसी तरह सरकार ने नारद लुइटेल को नेपाल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड का सीईओ नियुक्त करने का भी फैसला किया है। आज की बैठक में वित्त मंत्री के समन्वय के तहत नेशनल बैंक के गवर्नर की नियुक्ति के लिए तीन सदस्यीय सिफारिश समिति का भी गठन किया गया। प्रमुख तीन दलों के शीर्ष नेताओं के बीच संक्रमणकालीन न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग और जबरन गुम किए गए व्यक्ति संबंधी छानबीन आयोग में रिक्त पदाधिकारी पदों पर व्यक्ति सिफारिश करने के लिए समिति गठित करने की सहमति हुई है। आज प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में हुई बैठक में आयोग में पदाधिकारी सिफारिश करने के लिए समिति गठन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की सहमति हुई। ये जानकारी प्रधानमंत्री के विज्ञ सलाहकार अग्नि खरेल ने दी। बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देववा, नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड, गृहमंत्री रमेश लेखक लगायत सहभागी थे। ज्ञात हो कि इससे पहले भी पूर्व प्रधान न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र के नेतृत्व में समिति गठन हुई थी। वो समिति किसी भी पदाधिकारी का नाम सिफारिश नहीं कर सकी थी। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने कहा कि शासन में रहकर गलत काम करने वालों को दंडित करने का अधिकार नागरिक को है। आज सोलुखुम्बु की नेचासल्यान गांवपालिका में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति पोडेल ने कहा कि लोकतांत्रिक गणतंत्र ऐसी व्यवस्था है जहां नागरिक अपनी सार्वभौम सत्ता का मालिक स्वयं होता है। ये बताते हुए कि स्वतंत्रता और मौजूदा शासन प्रणाली समय की मांग और जनता की आकांक्षा है, उन्होंने कहा कि जनता को खुद के बनाए हुए संविधान से बाहर की कोई भी निरंकुशता और अराजकता स्वीकार नहीं होगी। हम टीबी रोग का अंत कर सकते हैं, निवेश की प्रतिबद्धता और सेवा प्रवाह की सुनिश्चितता आज की आवश्यकता के नारे के साथ आज नेपाल में भी अंतर्राष्ट्रीय क्षय रोग दिवस विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर मनाया गया। हर साल मार्च 24 को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय क्षय रोग दिवस टीबी रोग के विरुद्ध जनचेतना जगाने और सरल सहज रूप में इलाज का प्रबंध करने व करवाने के उद्देश्य के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा आज भक्तपुर में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पोडेल ने कहा कि क्षय रोग के न्यूनीकरण के लिए स्थानीय तहों को सक्रिय होना होगा। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि बजट बनाते समय उसमें सूचना प्रविधि के पूर्वाधार निर्माण पर जोर देने की जरूरत है। बजट सीमा तथा स्रोत पर केंद्रित रहकर मंत्रालय अंतर्गत के विभाग और निकायों के साथ बजट योजना विमर्श कार्यक्रम में मंत्री गुरुंग ने यह बात कही। उन्होंने वृहत्तर उद्देश्य वाली योजनाएं लाने के संबंध में विभागीय प्रमुख का ध्यान आकृष्ट किया। इस बात का जिक्र करते हुए कि सूचना प्रविधि के विकास से राजस्व वृद्धि में बड़ी मदद हुई है, मंत्री गुरुंग ने कहा कि आईटी क्षेत्र में पूर्वाधार का निर्माण नहीं हुआ तो इससे अधिक लाभ नहीं लिया जा सकेगा। प्रतिनिधि सभा की शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति की बैठक में आज भी शहीद दशरथ चंद स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विश्वविद्यालय विधेयक पर धारागत बहस हुई। आज की बैठक में विश्वविद्यालय में पदाधिकारी नियुक्ति, सेवा सुविधा और पदमुक्त करने संबंधी धाराओं पर विमर्श हुआ था। बैठक में विश्वविद्यालय सभा द्वारा उपकुलपति नियुक्त किए जाने और सिफारिश समिति की सिफारिश पर उपकुलपति द्वारा अन्य पदाधिकारी नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे, ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसीको डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत की अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं पर्यटन समिति ने नतीजा आने के हिसाब से काम करने के लिए संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया है। समिति की आज की बैठक ने मंत्रालय द्वारा हो रहे कामों को और अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए भी ध्यान आकर्षित किया। मकवानपुर स्थित कुलेखानी जलविद्युत केन्द्र की तीनों ही यूनिट पूरी क्षमता के साथ संचालित हुई है। कुलेखानी जलविद्युत परियोजना के अनुसार सूखा मौसम शुरू हो चुकने के कारण केंद्र की पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट पूर्ण क्षमता में संचालित हुई है। कुलेखानी प्रथम के प्रमुख तारा दत्त भट्ट ने बताया कि प्रथम यूनिट से 60 मेगावाट, दूसरी से 32 मेगावाट और तीसरी से 14 मेगावाट बिजली उत्पादित हो रही है। इलाम नगरपालिका वार्ड नंबर 10 भीर गांव में सिंचाई परियोजना का पुनर्निर्माण होने से किसानों को अन्न वाली के साथ साथ सब्जी की खेती करने में सहजता हुई है। बता दें कि साल में अब तक एक ही बाली का उत्पादन हो रहा था, लेकिन सिंचाई परियोजना पुनर्निर्माण होने से अब यहां के किसान 3 बालियां तक की खेती करने लगे हैं। लघु सिंचाई कार्यक्रम अंतर्गत 41,94,000 रूपये की लागत में मालबांस से भीर गांव होते हुए तेसरो गांव को जोड़ने वाली सिंचाई परियोजना का पुनर्निर्माण होने से 39 परिवारों की 15 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की सुविधा पहुंची है। ये जानकारी हमारे संवाददाता ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में जंगल की आग भड़क उठी है। गंभीरता को देखते हुए यहां की एक काउंटी में लोगों को अनिवार्य रूप से निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं दक्षिण कैरोलिना के गवर्नर ने बढ़ती जंगल की आग के कारण आपातकाल की घोषणा की है। आपातकालीन दल उस क्षेत्र में आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं, जो अब भी तूफान हेलेन से उबर रहा है। ये क्षेत्र सितंबर में तूफान हेलेन से बुरी तरह प्रभावित हुआ था। तूफान ने 8,046 किलोमीटर सड़कों को क्षतिग्रस्त करने के साथ ही पुलों और पुलियों को नुकसान पहुंचाया था। उत्तरी कैरोलिना के सार्वजनिक सुरक्षा विभाग ने शनिवार रात 8:15 स्थानीय समय के अनुसार चार्लोट से लगभग 129 किलोमीटर पश्चिम में स्थित पश्चिमी उत्तरी कैरोलिना की पोल्क काउंटी के कुछ हिस्सों के लिए अनिवार्य निकासी की घोषणा की। गजा, लेबनान और सीरिया में फिर शुरू हुए इजरायली हमलों के बाद अमेरिका अपना दूसरा विमान वाहक युद्धपोत यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन को पश्चिम एशिया भेज रहा है, जबकि यमन के नजदीक लाल सागर में अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस कार्ल विंसन अपने विध्वंसकों के साथ पहले से तैनात है। इस बीच अमेरिकी सेना ने रविवार को एक बार फिर हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले यमन पर हवाई हमले किए। इस बार होदीदा शहर के हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया और वहां पर कुछ देर के अंतर पर 3 बार हमले किए गए। अमेरिकी विमानों ने शहर और किताफ शहरों पर भी बमबारी की। इसी प्रकार मारिब प्रांत के मजार शहर पर भी हमले हुए। सऊदी अरब के सरकारी टेलीविजन चैनल अल अरेबिया और अल हादत ने बताया है कि अमेरिकी हमले में हूती की नौसेना का कमांडर मंसूर अल सादी मारा गया है। अमेरिका ने कहा है कि हमलों में हूती के अड्डों को निशाना बनाया गया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक कुलमान घिसिंग को किया बर्खास्त। हितेंद्र देव शाके को सौंपी कार्यकारी निदेशक की जिम्मेदारी। संक्रमणकालीन न्याय संबंधी आयोग में रिक्त पदाधिकारी नियुक्ति की सिफारिश के लिए समिति गठित करने की प्रमुख 3 दलों के बीच हुई सहमति। शासन में रहकर गलत काम करने वालों को दंडित करने का अधिकार नागरिक को है, राष्ट्रपति रामचंद्र पटेल का कथन। और अमेरिका के जंगलों में फिर भड़की आग, इलाके को तुरंत खाली करने के किए गए आदेश। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।